ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 16। गुणारणिच्छन्न चिदुस्मपाय यत्क्षोभ विस्पूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणिकाष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका आसीन असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन गुणों के कार्यकलाप पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग दिव्य होते हैं। अतः आप स्वयं उनको शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है, तेषां इवान कंपार्थम अहम अज्ञान अजमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भस्वता। जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के श्री चरण कमल को धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना रणिकाष्ठ के भीतर छिपी अग्नि से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे, अग्नि का आवाहन रणिकाष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से आच्छन्न है तथा ज्ञान की अग्नि ज्ञानदीप भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है। यदि इन्हें कोई हृदय में धारण करे, सवे मना कृष्ण पादारविंदयोः, यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है, तो भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप में सुशिक्षित न होने पर भी भक्त को भगवान भक्ति के कारण भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दें, तो भला कोई अज्ञान से कैसे रह सकता। अतः माओवादियों का यह दोषारोपण कि भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित के लिए है, यह सत्य नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेश से ऊपर हो जाता है, वह परमहंस होता है। वैदिक वाङ्मय का अवगाहन किए बिना ही भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रवृद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतएव हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो ये जो प्रार्थना स्तुति गजेंद्र द्वारा किया जाता है, गजेंद्र का परिचय आप लगभग पा चुके हैं कई दिनों से, महाबली गजेंद्र, जिनका आपने बल, अपने शक्ति, अपने प्रतिष्ठा, अपने प्रभाव पराक्रम ऊपर बड़े अभिमान था, बड़े भरोसा था, आज मिट चुका है। बिल्कुल अभिमान शून्य होकर के इस स्थिति में आ चुका है, गल चुका है उनका सब कुछ, अंदर बाहर सब गल चुका है। आप नमस्करोमी नमस्करोमी बार बार प्रणाम ठोकता है, किसको करता है, कोई है ही नहीं, फिर भी प्रणाम करता है। भाई प्रणाम आप किसको करते हैं, कोई तो व्यक्ति प्रणाम लेने वाला होगा ना, कोई है ही नहीं किसी को प्रणाम करते, लेकिन प्रणाम करते रहते हैं। गजेंद्र प्रणाम करता है, आज उनका स्थिति, पहले तो प्रणाम लेने वाला था, अब प्रणाम करने वाला बन गया। तो यह स्थिति केवल इस गजेंद्र का कथा कहानी मत सुनिए, हम सभी कोई कम नहीं है गजेंद्र से। ये संसार सागर में हम प्रवेश किए हैं और मान प्रतिष्ठा लोभ पोस्ट पोजीशन के मकर घड़ियाल हमको खींचते, आसक्ति रूपी घड़ियाल हम खींचे ले जा रहा है। कभी कभी भक्तों के साथ में पकड़ करके हम अपने ज्ञान अपने मान अपने पढ़ाई का अभिमान में थोड़ा खींचे आते हैं, लेकिन फिर खींचे जाते हैं, फिर प्रेस्टीज में ले लगा लेते हैं, फिर खींचे जाते हैं। ऐसे युद्ध चलते, आप चाहे कितने बड़ी धनी मानी ज्ञानी जोगी क्यों ना हो, आपके टक्कर का दूसरा तो है ही है, ये नहीं मान सकते। आप अपने घर में हो और दूसरे तो आपसे बढ़कर कोई और है। हम तो सब चेतन आत्मा है, ये संसार तो जड़ जगत है, तो जड़ में आकर के अब कितने भयावह बलशाली क्यों ना हो, और जड़ संसार में आप तो जड़ घड़ियाल खींच लेगा, यहां बल आपका घटेगा, बढ़ नहीं सकता। कितने हजारों साल हम भी लड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी चालू है, हमारा अभिमान घटता नहीं। कई बार मर भी चुके हैं, लेकिन मर के फिर भी नहीं छोड़ते। लेकिन धन्य है गजेंद्र, इतने लंबा समय उसके बल पर भरोसा करके युद्ध करने के बाद अभी बिल्कुल भरोसा टूट चुका है। अपने बल पर, बुद्धि पर, पराक्रम, कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल निस्सहाय होकर के, मान शून्य होकर के इस प्रकार प्रपन्न, बिल्कुल शरणापन्न हो चुका है भगवत शरण। मरते समय में उनको आशा ही नहीं, तो शरणापन्न होकर के जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना बिल्कुल सुनने लायक है, विचार में लायक है। हम लोग तो डेली नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और गजेंद्र तो ऐसा नहीं करता, खड़े होकर हम तो दंडवत ठोकते हैं, पूरा सो करके, सो भी जाते हैं कभी कभी, तो इस प्रकार करते हैं कई बार, लेकिन ये प्रणाम सचमुच प्रणाम नहीं कर पाया। प्रणतः पात ये अभी नहीं किए हैं। काय मन वाक्य, काय कुछ कर लेता है, मन कुछ और, वाणी कुछ और कहता है ना। भगवान से हम ढंग के प्रणाम भी नहीं कर, प्रणाम करने का स्थिति नहीं आया, प्रणाम करने का हम अभी ढंग से नहीं कर पा। इस प्रकार स्थिति में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके वो कहते हैं आज के श्लोक में कि गुणारणी छन्न हे प्रभु, आप छिपे हुए हैं। हम देखते हैं घड़ियाल, ये गजेंद्र किसको प्रणाम करता है, हम किसी को प्रणाम करेंगे भाई, किसी व्यक्ति तो होना चाहिए ना, किसी तो पानी होना चाहिए जिसको प्रणाम करे, वो तो कुछ कोई नहीं है, पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मगर मासु खींचे जा रहा है बेचारा, ऊपर से प्रणाम ठोकते चला जा रहा है, किसको प्रणाम कर रहा है तूने। तो गज बोलता है कि ऐसे मत समझो किसी को प्रणाम कर, प्रत्यक्ष प्रणाम करता हूं, प्रणाम किसको करता हूं ना, प्रणाम इसी को करता हूं, मुझे जो दिखता है, जो सब जगह में है, जो बिल्कुल प्रंट है। बोलते हैं गुण रणी छन्न चित उष्म पाय, बोलते हैं जिस प्रकार अरणी, पहले जमाने में माचिस तो था नहीं, तो ये लकड़ी लाते थे, लकड़ी को एक लकड़ी के घर्षण करके आग पैदा करते थे ना। आजकल तक आजकल भी घर्षण करते ही है भाई, माचिस के तिल्ली लेकर मारते ना, वो नहीं तो लाइटर भी घिसना नहीं, घर्षण तो करना पड़ता है आजकल, थोड़े फाइन हो गया है, इतना ग्रास नहीं, थोड़ा सटल अप कर दियो, लेकिन घर्षण तो है ही है। केवल घर्षण करने से अग्नि निकल पड़ेगा कि गारंटी थोड़ी है, अग्नि उसमें है और अग्नि निकलने का सारे व्यवस्था है, तब जाकर अग्नि निकलेगा। आप बोलेंगे लकड़ी से लकड़ी पता नहीं, अग्नि घी से निकले ना निकले, हमारे माचिस तो एक तिल्ली में निकाल, है ना, ना? बड़े हमारा भरोसा रहता है। अगर माचिस को साइड पूरा गिला हो जाए तो, गिला हो जाए निकल जाए तो आप कितने घिसो पूरा माचिस लगेगा नहीं। अगर वो सही है और माचिस गिला, तिल्ली गिला हो जाए तो थोड़ा सा पानी फिर जाए तो तुम्हारा माचिस ही माचिस गायब, कुछ नहीं हो, कितने भरोसा क्यों कर रहे हैं ना। लेकिन इसका मतलब हम सभी का कितने भी हुड़पो को पूर्ण विश्वास है कि आग तो इसमें है, दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता। जैसे लकड़ी के अंदर आग को बोलेंगे ढूंढकर निकालो, निकलेगा निकल पाएंगे, लेकिन विश्वास है कि नहीं उसके अंदर है, है। जैसे दूध के अंदर घी है आप मानते ना नहीं, अब मैं आपको 2 लीटर दूध दूंगा बोले निकालो घी निकाल के दे दूंगा, निकल पाएंगे? हाथ घुसा करके कितने भी ढूंढांड करके गिला करके हाथ में घी कहां है, दिखता नहीं मिलता नहीं। लेकिन ये तो मानना होगा कि घी अंदर है। जैसे काष्ठ में अरणि में अग्नि है, हमको भले ना दिखे लेकिन उसका प्रक्रिया करने से, घर्षण करने से वो अग्नि प्रकट होता है, उसमें अंदर है तभी तो प्रकट होता, नहीं है तो कैसे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार दूध के अंदर घी है, हम ढूंढे नहीं मिले, लेकिन उसको प्रक्रिया करो, उसको जमाओ और फिर जामुन डाल के करके फिर मंथन करो तब फिर देखो प्रोसेस में बटर बटर से घी है ना, उसका प्रक्रिया करने से उसी के अंदर से निकलेगा, दूध से ही निकलेगा। कोई पानी से कोई दूसरी चीज छुट डालते हैं, उसी से वही दूध के जामुन, दूध के जामुन कुछ प्रक्रिया है उसको करना, इसी प्रक्रिया से उसी दूध से घी निकल पड़ेगा जो अभी दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार ये प्रत्येक अण कण में भगवान है, हमारे अंदर भी है, हमको नहीं दिखता, सभी के अंदर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया करो, घर्षण करो, प्रक्रिया करो तो निकलेंगे। यही है पद्धति, भजन की पद्धति। ये पद्धति शुरू होता है समर्पण से, बिना समर्पण में ये सब गिला है, सब है। जैसे हम माचिस रखा हुआ है, पूर्ण विश्वास है कि आग तो जलेगा, ये माचिस है ही है। हम कभी जा रहे हैं खाना पकाने के लिए, कुछ आग जलाने के लिए, कुछ के लिए माचिस पॉकेट में है, पूर्ण विश्वास है कि तो है आग जला लेंगे। लेकिन वही गए अब पता चला कि ये तो गिला ही है, तो भरोसा खत्म। जैसे पता चला गिला ही, ज्ञान हो गया तो खत्म, फिर तो जलेंगे है ही नहीं, होते हुए भी प्रकट नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब क्या, तभी नहीं उसी को सुखा दो फिर प्रकट हो जाए। तो बोलते हैं कि हे प्रभु आप तो सर्वत्र है लेकिन छिपे हुए हैं आप, कैसे? जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी रहता है, दूध के अंदर घी छिपे रहता, दिखा नहीं पड़ता बाहर से, प्रक्रिया करने से, घर्षण आदि क्रिया करने से प्रकट। बोलते ठीक इस प्रकार आप गुणों के अंदर छिपे हैं, गुणों आपको तो गुण छू नहीं सकता, आप कैसे छिपे हैं? नहीं आप नहीं छिपे हैं, जैसे कभी बादल ढंग देता है सूर्य को, हम क्या बोलते हैं सूर्य ढंग गए बादल, लेकिन कहना सही है, कौन ढका? हमारे आंख खुद ढक जाता है भाई, सूरज को कैसे ढंक सकता वो, लेकिन हम बोलते तो बोलते हैं सूर्य ढंग गया, सूर्य दिखाने पड़ता, सूर्य क्यों देख रहा, तू भुड़बक देख नहीं सकता, इसको दोष क्यों देता। ठीक इसी प्रकार गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता ना, स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन हम गुण से सरोवर है, ये शरीर तो गुणत्र प्रभाव है, ये गुणात्मिक है, हम इसी में बिल्कुल भरे पड़े हैं, और इस 3 गुण ऐसे ढांक दिया जैसे धुआं में आग ढंक जाता, ऐसे ढंके हुए आपके ज्ञान मतलब भगवत विषय का ज्ञान, जीविका भगवान के, भगवान के ज्ञात नहीं हमेशा रहते हैं, उनको गुण स्पर्श नहीं कर सकता। हम लोग इस गुण माया के द्वारा इतने ढंक गए कि भगवत ज्ञान पता नहीं चलता, गुण के अंदर छिपे हुए है भगवत ज्ञान, गुण साफ हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाए। ये प्रकट होगा कैसे? क्रिया करने से प्रकट होगा, लेकिन केवल क्रिया करने से प्रकट हो जाएगा ऐसी बात नहीं। अब लकड़ी के माचिस के तिल्ली घिसो की लाइटर को जला, उसके अंदर वो लिक्विड ना हो तो आप घिसते घिसते आपको अंगूठी छिद जाए तब बिना निकले। तो ये होना पड़ेगा, भगवान इधर है, भगवान तो है हमेशा है, तो फिर भी कहीं नहीं भाई सूखा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ये सूखापन क्या है, ये गिल्लापन क्या है, यही हमारी भौतिक स्थिति। सूखापन है समर्पण, प्रपन्न मातृ प्रपन्न पशुपास विमुखणाय, उनका भरोसा हो गया कि आप निश्चित है। देखिए पहले जन्म में सुना था, सत्संग किया था, अब जब ऐसे विपद संकुल मनुष्य स्थिति में आ गया, अब पूर्ण अभिमान शून्य होकर के आपके बल पर, आपके मान प्रतिष्ठा पराक्रम प्रभावों पर सब प्रकार से टूट गया आशा भर सब, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जीरो, मैं हीरो समझ रहा था अपने आपको। अब पता चल गया कि मैं कोई मेरे नहीं है, हे प्रभु मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। मातृ प्रपन्न, आगे श्लोक में कहेंगे, मेरे जैसे प्रपन्न हो चुका है, पूर्ण शरणागति, भगवान को अपने हृदय में सर्व पूरा पूरा धारण कर चुका है, और जो भी कुछ प्रार्थना, जो कुछ क्रिया कर्म हाथ पैर करे, सब उन्हीं को समर्पण करके पूर्ण निष्कर्म भाव से कोई करे, तो फिर उनके लिए कोई लिखा पढ़ी भागवत गीता भागवत को पढ़ना कोई जरूरत नहीं ना। ये गज था, गज कहते मूर्खों को, कोई तुलना यहां पर हाथी के साथ करते नहीं, गज मूर्ख है। तो बड़ा शरीर था लेकिन बुद्धि तो बिल्कुल कम था, मूर्ख हाथी था, कोई पढ़े लिखे नहीं था, महाघमंडी था, अपने मित्र पर बड़ा घमंड था। लेकिन जब समर्पण हो जाता है, सब समर्पण तभी होता है जब आपको पिघला करे गलाने करके तब सरेंडर करो ना, तो समर्पण हो जाता है तो कुछ और न वेद न तपसा न ज्ञान न जय कुछ आवश्यकता नहीं पड़ता, आप सबसे परे हो जाते हैं। यीशु कहते हैं नैष्कर्म भाव ने विवर्जिता आगमस, आप इस गुण के अंदर रहते हैं, क्या प्रमाण है गुण के अंदर रहते हैं, ये सारे संसार में देख रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं मेरे चारों तरफ, ये कैसे हुआ, न गुण प्रभाव, गुण के अंदर क्षोभ सृष्टि किए, आप ही ने तो किए, गुण अपने आप से थोड़ी हो सकता, जड़ है, गुण के अंदर गति ये क्षोभ को उत्पन्न कैसे किए, विक्षोभ गुण विक्षोभ आपने किए, गुण के अंदर छिपे रह करके गुण को गुण में घर्षण करके क्षोभ करके आग प्रकट किया आपने, आप ही आग के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए हैं, गुण क्षोभ, और जिसका फल होता है ये संपूर्ण सृष्टि। अनेक अनेक प्रकार के लोग, जानकारी दार्शनिक लोग इस सृष्टि के अनेक कारण बताते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी है भगवत ज्ञान वो सीधा कहेगा चाहे निमित्त कारण उपादान कारण सर्व कारण, और कोई कारण हो ही नहीं सकता ना, कुछ कारण है सीधा वही कारण। तो बोलते ये जो गुण को आप छूते भी नहीं लेकिन फिर भी गुण के अंदर क्षोभ सृष्टि कर देते हैं, वो तो सारे दुनिया बन पड़ा है, ये दुनिया को देख करके हमके अंदर एक ठोस प्रमाण हो जाना चाहिए, दुनिया देख ही पड़ता है उसके पीछे तो कोई है। बोला इसीलिए मेरे बिल्कुल कंफर्म है कि आप हैं, क्योंकि देख रहा हूं इस तरह कैसे हुआ, ये हुआ आपने करा है। तो आप है इसलिए तो हुआ, तो आप गुण के अंदर छिपे हैं, बैठ के सब करा रहे हैं सृष्टि। गज बोलता है मेरा ये हाथी के शरीर, इतने बड़े स्थूल पशु शरीर है, भरा हुआ है तमगुण रजगुण से, वो भी आपका है, इसी गुण में भी आप हैं, इस गुण को विक्षोभ करके इस प्रकार सृष्टि सर्जना शरीर सृष्टि सब किए हैं, पिंड ब्रह्मांड कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर आप फिर भी छिपे हुए हैं। अगर कोई शरणापन्न होए, शरणापन्न होकर प्रार्थना करे तो उसी से ही आप फिर निकल पड़ते हैं, वही गुण साइड आउट हो जाता है, और जैसे लकड़ी के अंदर आग प्रकट हो जाए ज्ञान दीप प्रकट हो जाता है, और प्रकट हम सोचते हम करवा लिए, हम नहीं करवाए, आप हैं, आप कृपा करके प्रकट होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहते हैं, भगवान कहते हैं ना गीता, तेसा हम एवान अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं क्या अनुकंपा कैसे करता हूं, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के धूप दीप जला देता हूं उनके अंदर में, उनके अंदर में भगवान जलाते हैं, हम थोड़ी जलाते हैं, भगवान प्रकट करते हैं, उसका मतलब वो भगवत ज्ञान ऑलरेडी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए,
श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ही उदय, ये प्रक्रिया करने से वो है प्रकट हो जाएगा, अंदर जाएगा, ऑलरेडी है। तो इसी को बोलते हैं कि भगवान बोलते मैं तो हूं, मैं आग जला देता हूं, ज्ञान प्रकट हो जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। हाथी भी समझ लिया, उसकी ज्ञान की दीप जल गया अंदर से, हाथी शरीर में रहते हुए स्थिति आया, ये समर्पण प्रपन्न हो गया, तो उसके अंदर भी आग प्रकट हो गया। वो जो बात कह रहा है हम अभी समझ नहीं पाते, हाथी कह रहा है लेकिन स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ जाएगा हम भी उसे समझ पाएंगे। जब तक अभिमान घमंड ये सब रहेगा उसके ऊपर, अब अभिमान घमंड जब रहता है तो हमारा प्रमाण क्या होता है ना, हमेशा दूसरे में दोष देखेंगे, ये इसे कैसी वजह से, इसी वजह से, इस प्रकार परदोष दृष्टि भाव जब रहेगा तो कदाचित प्रपन्न नहीं हो पाएंगे, समर्पण तो प्रणाम नहीं कर पाएंगे, नमस्कार तभी करेंगे जब प्रदोष कातर भाव हट जाए, दूसरे में दोष दृष्टि हो ही नहीं सकता, केवल दोषी आपको ठहराएंगे ना। ये जो कुछ हुआ सारे का दोष सरासर मैं ही हूं, कोई नहीं, अब अभी नहीं किया था पहले किया होगा, नहीं तो मैंने कैसे किया, भगवान के आयन बिल्कुल पक्का, मुझे जो कुछ प्राप्त होता है सुख दुख मेरे कर्मवश प्राप्त होता है, दूसरे के कर्मवश मैं केवल दोष देता हूं। ये भाव जब आ जाएगा तब गाणी आ जाएगा, तब प्रणाम कर पाएंगे, नहीं तो प्रणाम करेंगे, आपके अभिमान को घमंड को रखकर प्रणाम कर सकता है, वो भी जो प्रणाम करके दिखाने के लिए, दूसरे मुझे दिखना है कि प्रणाम करता, मुझे कहेंगे हाँ आप तो इतने बड़े भक्त, प्रणाम नहीं करता ये आशा लेकर के करते, भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं करते। तो इसलिए भगवान को प्रणाम सही तभी हो पाएगा जब इस मान अभिमान परदोष बुद्धि बिल्कुल हट जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब जाकर प्रणाम। तो हाथी तभी अभी हुआ, इतने प्रपन्न शरणापन्न हो गया, ये भाव होता है प्रभु ये दुनिया में देख रहा हूं, तो दुनिया हुआ कैसे, ये गुण क्षोभ करके सृष्टि किए, तो आप अंदर हैं, छिपे हुए हैं, आप छिपे हुए हैं, और ये जरूर नहीं कि मैं वेद वेदांत पढ़ करके उसको समझ प्रकट, बोले कोई जरूर नहीं, अब तो मर रहा हूं हाथी के शरीर में, लेकिन ये मैं जानता हूं कोई भी कितने दुर्बुद्धि किसी प्रकार भी हो, अगर पूर्ण रूप में उसको जानकर शरण कर लिया, प्रभु आप हैं, आप मेरे, मैं आपका हूं, बस बोले आप, फिर उसके लिए कोई और नीति नियम नहीं लगेगा, इतने सारे नीति नियम फॉर्मूला है, बोले कोई ही फॉर्मूला है, आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली वाले तो ट्रैफिक नियम को इसे ही नहीं मानते, तो लेकिन रोड का जो रोड में गाड़ी चलाते हैं उनका नियम है ना, रेड लाइट हो बंद, ग्रीन लाइट हो चले, लेफ्ट साइड में कई नियम है रोड का नियम, लेकिन जो ऊपर में आकाश में चलता है उनके लिए रेड लाइट ग्रीन लाइट कोई फर्क पड़ता है ना। तो जो भगवान को पूर्ण समर्पण कर दिया वो ऊपर उठ गया, उसको फिर रोड ट्रैफिक नियम का कोई जरूरत नहीं गया, उसके लिए तो ट्रैफिक लाइट जाम कैसे चला गया, अरे कैसे चला गया, उसके लिए थोड़ी रास्ता में थोड़ी जाएगा, वो ऊपर गया तो सीधा उठ गया, फिर आगम निगम से ऊपर उठ जाएगा, कोई जरूरत नहीं उसके लिए सब करना ना। माथुर ब्राह्मण लोग बैठ करके खूब यज्ञ कर रहे थे, हां पक्का घी ला करके, खंटी घी ला करके, बिल्कुल स्तोत्र स्तुति वेद की ऋचाओं पढ़ करके, स्वाहा इदमग्न इदं नमः ऐसे करके अग्नि कर रहे थे, और भगवान ने आपने बालक को भेजे, साक्षात भगवान परात्पर ब्रह्म परमेश्वर, अब ढके हुए ग्वाल वेश में, गाय चराने वेश में गए, भूख लगा था, अरे आग में किसको स्वाहा देते हैं, कौन खाता है, ग्रहण करता है, यज्ञ में विष्णु वही को खिलाते हैं, अग्नि मुखात अग्नि अजायत, उन्हीं को खिलाते हैं स्वाहा स्वाहा करके, और डायरेक्ट वो आकर मांग रहे हैं मुझे दो, मैं भूखा हूं, नहीं दे रहे भोग नहीं छोड़ा अब तक, पूर्णाहुति नहीं हुआ अभी दे देंगे, हटो यहां से, कहां से आगे गाली देकर भगाया उसको, वो आकर के बोले कृष्ण हम क्यों भेजा, ये ब्राह्मण लोग तो बड़े वेदवादी, खूब श्लोक रटते हैं, हम तो गाली देकर भगाए मोटे जनेऊ पहन करके, सीधाखंड हम बदराम बदराम कैसे गाली दी, हम नहीं जाएंगे, भगवान बोले एक काम करो आप फ्रंट साइड में क्यों, बैक साइड में जाओ, वो तो बड़े बड़े ब्राह्मण है, उनके पत्नी बिचारी वो काम में लगते हैं, कोई वेद पाठ नीति नियम करते नहीं, सुबह उठ करके नहाए कि नहीं पता नहीं, साफ सुफ करके पकवान बनाना ये करना, उनके लिए साफ समान तैयार करती है बिचारी, उनके पास जाओ वो दे देंगे ना, उनका बुद्धि शुद्धि हो चुका है ना, कैसे ना घी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, कहा तो उनके ब्राह्मण घर थे तो गौशाला तो है नहीं, दूध दही घी खरीद रहे थे, खरीदने किसी दूध वाली दही वाली घी वाली सो कहां से आते हैं, ब्रज से आते हैं, ब्रज से जो दही वाली दूध वाली और फल वाली जितने सब आते हैं तो उनसे खरीदने समय वो जो बेचने वाली आते हैं हमेशा एक बात करते रहते, ओहो आज लाला ने ऐसा किया, क्या बता। अब इंफॉर्मेशन उनके द्वारा आता है, उसको सुनते हैं बैठ कर, खरीद क्या खरीद कर रख करके समान बैठ के सुनते हैं, अच्छा और बोलो ऐसा, हाँ ऐसे पहाड़ उठाया, ऐसे कालीदान किया, ऐसे किया। अब सुनती सुन करके भगवत कथा को डायरेक्ट आंखों देखने वाली इसी ग्वालिन इसी गोपियों जो बेचने वालियों के मुख से सुन करके उनके भगवत कथा कान से अंदर जाकर हृदय बिल्कुल शुद्धि हो चुका। अब उनका ये वैदिक नियम विनियम से परे उठ चुके हैं, उनको पता नहीं, वो क्लीन हट हो चुका। कोई प्रामाणिक वक्ता नहीं दासन लगा कर सुनता भागवत से शुरू कर, बोले ये नहीं, दही बेचने वाली दूध बेचने वाली घी बेचने वाली सिर्फ तो डायरेक्ट सुनते हैं, वो कोई है हत्ता फर्त क्या करना उसे व्याकरण लगा करके, वो तो सीधा आंखों देखा, हलो लाला ऐसा किया, हम देख रहे हैं आज ये भेष में ऐसे किया, सीधा उसको सुन करके इतने मन उनका आकर्षित हो चुका है, इतने हृदय शुद्ध हो चुका है, बोले उनके पास जाओ, ये तो वेद पढ़ पढ़ करके व्याकरण के सूत्र उच्चारण करते करते गधे हो चुका, रद्द हो चुका उनका हृदय, वो उन्हें काम थोड़ी करेगा, सब गिल्ला पड़े हैं, कितने माचिस लगाते जाओ आग पकड़ ही नहीं होगा, उनका तो बिल्कुल सुखा है मेरे कथा सुन सुन के बिल्कुल। बोले नहीं पता नहीं, ये पढ़े लिखे ब्राह्मण जो जानते हैं आपको ब्रह्मा करके वो नहीं दिए, और वो तो कुछ नहीं जानते बेचारे, अनपढ़ गवार स्त्रियां ही वो घर के काम में लगे हैं बेचारे, तभी जमाने में स्त्रियां को स्कूल कॉलेज में नहीं जाते, नौकरी वाकरी नहीं करते थे, तो घर में ही कुकिंग वुकिंग करना, घर साफ काम करते थे, बोले ये तो स्कूल कॉलेज में नहीं गए और तो अब अपना घर का काम करते, बोले वही तो डिग्री होल्डर वही, आप जाओ इनके पास कुछ बेकार। तो हमने भगवान के कहने पर उन्हें गए, लड़के लोग पीछे दरवाजे पर गए, गए बालक किस लिए आए, वो देखे गोप के बालक हैं वाले, बोले वो भी कुछ बोलेंगे शायद, क्योंकि खूब सुने ना कृष्ण के बारे में, सुनने के लिए इतने ललक इतने चाह है, वो आ गए। बेटा किस लिए, कोई बात कुछ है, कहना कहने आया, कहा आया ना आया है, भूखा है, भूखा है कहाँ है, वही थोड़ी झाड़ी पर पीछे है, आया नहीं हमको भेजे भूखा है खाने के लिए, सही में कृष्ण बलराम आए भूखे खड़े ना, हाँ हमको भेजे। आप भूल गए कि पतिदेव उनका मंत्र मंत्र उच्चारण करके पानी फेड़ करके भोग आएगा, भोग लगाऊंगा, पूर्णाहुति होगा, बैठे हैं सारे फाइनल मंत्र उच्चारण हुआ है, एक खबर मार ए ला रही हूं ना, हाँ ला रही हूं, ला रही हूं, भूल गए कि मुझे लेना भी था, सारे को सारे टुकड़ा उठा करके पीछे दरवाजा से भागे। अरे भाई पति बैठा है जल तुलसी लेकर के भोग करने के लिए, आग पूर्णाहुति हो गया भोग चढ़ाना, चूल्हा में जाने दो, गए कुछ पूछे भी नहीं सुने नहीं भाग गए। अरे ब्राह्मण बोले आ क्यों नहीं रहे, घंटी बजा रहा हूं भोग नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चले गए थे, कुछ ब्राह्मण तो दौड़ कर आए, क्या करे यार मैं गुस्से में आए, गुस्से हो ना, जैसे कभी कभी आप मन में ऐसा सोचो आप पति हो, आप बैठ कर स्नान दान करके आए, आकर बैठ कर भोजन कर रहे हैं, गरम गरम रोटी अपने पत्नी ला के दे रहे, अब एक रोटी दी आप खाए भूख बहुत लग रहा है, दूसरी रोटी ला रहे अब बैठे खत्म हो गया थाली से, क्या करे लाई रहे, वो रोटी नहीं लाई, वो रोटी लेकर और कहीं चले, आपको बता ही नहीं आपका क्या भाव होगा, है ना, कितने टेम्पर होगा आपका, थोड़ा सोचो तो सही, तो ऐसे टेम्पर बोले सुबह से अभी तक बैठे खाए नहीं, सुहा सुहा करते रहे, अभी भोग लाए खाए तो वो भाग गए, तो झाज अभी लाई करके लाई नहीं, आपको है थोड़ी लाएंगे, आप सब दौड़ करके गए, कुछ लोग चले कुछ लोग जा ही रहे थे, पकड़ लिए उनको जबरदस्ती, कहां जा रही हूं, अभी मना कर पीछे दरवाजे भाग क्यों रहे, बोलो तो पकड़ने बाद भी छोड़कर चले जाते थे, किसी को जबरदस्ती पकड़ लिए उनके शरीर छूट गया, इतने कृष्ण कथा सुन करके चाह चुके, तो साक्षात भगवत दर्शन किए उन्होंने, कुछ पढ़ी लिखी कुछ नहीं था, मंत्र तंत्र तंत्र कुछ नहीं आता था, और ये सारे वेदवादी वेदविद सुहा सुहा करते हैं गए, भगवान ही बोले उनसे क्यों जाता है, सुख है कुछ नहीं रस निकलेगा उनसे। तो इस प्रकार जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, भगवान को चरण कमल हृदय में धारण कर लिया, उन्हीं के प्रति समर्पित हो गया। ये तो सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत परा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत परा। तेसाम अहं समुद्धरता में ही है ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत परा। अन्य ध्यान उपासते बोलते हैं कि जो सारे कर्म, ये तो सर्वाणी कर्माणि हर प्रकार कर्म मई संन्यास मुझ में दे दिया, मुझे छड़ा दिया मेरे ऊपर, जा आप ही रिस्पॉन्सिबल, मेरे ऊपर छोड़ दिया। छोड़कर क्या क्या, तू अनन्य भावे न मांग धायंत उपासते, अनन्य भाव से कोई अन्य भाव नहीं, एक मेरे भाव से मेरे उपासना किया तो उनका क्या करूंगा मैंने। तेसाम अहम, भगवान स्वयं गारंटी देकर कहते मैं खुद उनके लिए, तेसाम अहम समुद्धरता सम्यक रूपेण उद्धरता, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, इस भव सागर से मृत्यु संसार से मैं खुद पर्सनल जाकर उनको उठाऊंगा, किसी फोन करके भेजूंगा नहीं जाकर ले आऊंगा ना, आई विल गो पर्सनली। तेसा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ, लेट भी नहीं करूंगा। हे पार्थ, ऐसा सोचो कि तुम आयोगा पता नहीं वैकुंठ वाले हम मर जाएंगे तुम कब आओगे, नो लेट नहीं होगा, ना चिरात पार्थ, लेट भी नहीं होगा। भक्त वो हाथी का इतने भरोसा आ गया, आगे शोक मातृ प्रपन्न पशु पाशन मुख्यण आया, हे प्रभु मैं समझ लिया मैं जैसे प्रपन्न हो चुका हूं, आप तो मेरे पशुपास को विमुख करेंगे ही, तत्क्षणाता करके मेरा विश्वास है आप एक आध सेकंड में मैं मर जाऊंगा, सारे शरीर डूब चुका पानी में, केवल ऊपर का इतना हिस्सा बाकी है, लेकिन फिर भी मैं अभी भरोसा करता हूं कि आप बचा सकते हो, बचा ही दिए, बचा दिए। गजेंद्र मुख्य का जो घटना है भागवत में ऐसे एक प्रभावशाली घटना है जिसको लोग गाते हैं, गजेंद्र को भगवान उद्धार के मुख्य कर, गजेंद्र को मुख्य कर, गजेंद्र सुखी का मुख्य कर, है ना। तो भगवान के प्रभाव अंत पॉइंट पर ओ याद किया तब, और उससे पहले तो मान अभिमान था, अपना लड़ाई अपने बल बुद्धि पर कर रहा था, नहीं यार, जैसे समर्पण किया जैसे प्रणाम किया भगवान को, तब ऐसे नहीं हो सकता कि काम ना बने। हमारा काम नहीं बन रहा है कि हम अभी तक ऐसे प्रपन्न नहीं हुए, ऐसे प्रणाम नहीं किए, अपनापन अपने भाव अंदर में छिपा रहता है, दूसरे के दोष देते हैं अपने भाव रहता है। जब बिल्कुल प्रभावित होकर के पुनः समर्पण होकर के अदोषदर्शी होकर के प्रभु को प्रार्थना करें, एक प्रणाम ठोको तो आंख खोलने पर काम मन पंच, ये प्रमाण गजेंद्र के लिए भगवान करती। तो गजेंद्र देखता है माधुक बोलते मैं देख ही रहा हूं ये सारे संसार जो है आपको उनके पीछे आप छिपे बैठे, बिल्कुल तैनात बैठे, कोई प्रणाम करे तुरंत आप काम करेंगे, अब मेरा विश्वास है आप करेंगे, मैं देख ही रहा हूं, भले हमको कुछ दिखाई ना पड़े। भगवान स्वयं कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत मूढ़ो यम ना ही जानाती, बोले मूढ़ लोग कैसे जानेंगे, मैं सब जगह में हूं लेकिन सब जगह में प्रकाश नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य क्यों, क्योंकि मैं मेरे जोग माया की पर्दा के नीचे ढके हुए हैं। बोलो बोलो महामाया के पर्दे में दो पर्दा, दो स्क्रीन है भगवान के हमारे बीच में, एक स्क्रीन को हम उठा सकते हैं, दूसरे स्क्रीन की पर हमारा हाथ नहीं जाएगा, है ना नहीं। हम कौन सा पर्दा को उठा सकते हैं, गुण माया, त्रिगुणात्म के माया इसे भगवान छिपे बैठे हैं, इसको कैसे हटाएंगे, ये हाथी ने हटा दिया, हाथी ने बोला छिपे हुए आप निकलो, हम हटा दिया पर्दा, अब तो प्रकट होगा, आग लगाया अच्छे से घिस दिया, दर्शन क्या प्रकट, अब निकलो तो पर्दा हटा दिए, प्रक्रिया करके समर्पण, भगवत समर्पण से निष्कर्म भाव से, ये तो सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य मत परा, अनन्य भाव जोगे न मई ध्यान उपासते, इस प्रकार उपासना अनन्य भाव से सब कुछ समर्पण करके प्रपन्न होकर के करे तो पर्दा उठ गया, अपना पर्दा उठा दिया जो हम कर सकते हैं, लेकिन अपना पर्दा उठा देने से भगवान दिखाई पड़ेंगे इसी बात में। फिर प्रार्थना करना प्रभु मैं पर्दा उठाकर बैठा हूं प्रभु प्लीज, तो हमारा कातर प्रार्थना सुन करके प्रभु अपना पर्दा खुद उठाएंगे, इसी कहते हैं खुद भगवान ज्ञान दीप प्रकट करवा देंगे, हाय हाय ये काम हमारा नहीं है, हम हर प्रार्थना भर कर सकते हैं। तेसा अहम अनुकंपार्थम, भगवान बोले जो मेरे इस प्रकार प्रपन्न होकर प्रार्थना करेगा उनके ऊपर मैं अनुकंपा करूंगा। कैसे करूंगा? आग जला दूंगा, प्रकट कर दूंगा, मैं पर्दा उठा दूंगा। ज्ञान दीपे न भस्वता, उसके हृदय को बिल्कुल आलोकमय कर दूंगा, आग लगा दूंगा हृदय में, तुरंत हृदय ज्ञान से भर जाएगा, अंदर भर जाएगा। बाहर से क्या डालें, किताब पढ़ पढ़ करके घुसे याद करें मेमोरी, ये सब माइंड पावर मेमोरी पावर, ये सब जड़ विद्या के लिए, अध्यात्म ज्ञान के लिए ये सब कोई काम के नहीं। इसलिए हम डेली गुरु वंदना में गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये जो अदिव्य ज्ञान जड़ ज्ञान इसको ये दिमाग से भरो याद करके। उनका बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस का मतलब नहीं गज को इंटेलिजेंट थोड़ी था आती ना, यहां तो हृदय की बात है, प्रपन्न की बात है, वो तो सीधा ज्ञान प्रकट होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वही प्रकाश हो जाएगा, भगवान प्रकाश कर देंगे। प्रकाश शब्द का अर्थ है कि वही था वही दिखाई पड़ा, प्रकाशित हुआ, जो नहीं था वो तो प्रकाश कैसे हो सकता, प्रकाश हो नहीं सकता, तो ही था मानी कुछ। तो केवल आवश्यकता है कि हमारे तरफ से प्रबंधा का जिसे हाथ नहीं कर लिया, इस प्रकार अगर हम समर्पण करे भगवान शरणापन्न करे तो अंदर से ही कोई किसी को पता ना चले ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो समझ में आ जाए, जैसे हाथी को समझ में आया, वो देखा बोला मैं देख रहा माधुर्य प्रपन्न, मैं देख रहा हूं मैं शरण हो चुका हूं, अब तो मैं बचूंगा ही, पशुपास में क्षण होगा ही मेरा। तो इस प्रकार जो सर्वोत्त भावे अनन्य भावे न, भगवान अर्जुन को बोले अक्षर ब्रह्म योग में, ऐसे जोगी लोग कान बंद करेंगे आंख बंद करेंगे तीनों भूमि मध्य ब्रह्म आवेश्य सम्यक, ऐसे बहुत सब बहुत क्रिया प्रक्रिया। अर्जुन बोला बाबर का बहुत टिपिकल जादू, ये विधि ऐसे करने की। भगवान बोले अर्जुन घबराता क्यों नहीं, ये प्रोसेस है, लेकिन यह सभी लोग निवेदन दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो अनन्य चित्ता सततं जो मांग स्मरते नित्य सह। हे अर्जुन ये सब तो साइड में कर दो, ये सब प्रोसेस तो है ही है वैदिक प्रोसेस, लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके केवल पूर्ण भरोसा करके विश्वास साथ जो अनन्य चित्त न अन्य चित्त, चित्त और किसी में नहीं लगाएगा, केवल मेरे ऊपर चित्त मदगत चित्ता हो करके अनन्य चित्ता सततं हमेशा जो मांग स्मरते नित्य सह, जो मांग मेरा स्मरण करेगा उसका क्या होगा। तेसा अहम सुलभ पार्थ, पार्थ उनके लिए तो मैं सुलभ हो जाऊंगा, नाक का नाक बंद नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए तो मैं सुलभ ही हो जाऊंगा। सुलभ कैसा? आजकल जैसा हम सुलभ करते हैं जहां तक 5 रुपए देना पड़ता है, ऐसे सुलभ नहीं, ऐसे सुलभ की जहां देखो यही है, हाँ पुलभ यही भी है, आपके बैठे उठना नहीं पड़े, बैठे बैठे जिसको ले सके, कोई परिश्रम ना करना पड़े, कोई प्रयास ना करना पड़े, अविष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं सुलभ। ये सब सुलभ थोड़ी तो बोलते इस प्रकार तस्या अहम सुलभ, मैं उनके लिए अत्यंत सुलभ हो जाऊंगा, वही के वही जहां है वही उनके साथ ही उनके पास ही प्रकट हो जाऊंगा, उन्हें काम कर लूंगा सुलभ पार्थ। उसके लिए कोई ये सब रूल रेगुलेशन नीति नियम कुछ नहीं चलेगा, ये वेद वेदांत है, रखे हो साइड में, अब काहे दिमाग खराब कर रहे, सीधा सीधा समर्पण करो, इसे करने से हो जाएगा। कोई प्रमाण नहीं, हाथी है, हाथी को क्या पता था, वो जो कर लिया तुम तो मनुष्य है, कुछ भी करता है, आकर नाचता है गाता है देखता है प्रसाद खाता है कुछ भी करता है, लेकिन ये सब बाहरी होता है, अंदर से समर्पण भाव, अंदर से समर्पण भाव कब होगा कोई पूछेगा, कब होगा जब वो निकल जाएगा तब होगा ना, जो सुबह हम पाल कर रखे हैं अपने मान प्रतिष्ठा आसक्ति गर्व मोह दूसरे को दोष देखना ये जो पड़े हैं, तब तो समर्पण होगा कैसे, इसको द मूवमेंट निकाल दो, द मूवमेंट भरोसा हो जाए प्रपन्नता हो और कम बनेगा। तो ले देकर ही करना है, इसको कर ले तो आप इस रेड लाइट ग्रीन लाइट से ऊपर उठ जाएंगे, फिर वेद के नीति नियम रेगुलेशन से परे हो जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा और नियम से विरुद्ध होकर आप चलेंगे, स्वयं प्रकाश आए फिर तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे स्वयं। नमस्कारों में करे उनको सीधा प्रणाम करेंगे, फिर भगवान को आंखों देखे मुंह के सामने प्रणाम करो, ऐसी स्थिति आ जाएगा। ऐसी स्थिति आएगा जब हम पूर्ण भगवत भरोसा में रहेंगे। लेकिन भगवत भरोसा रहेंगे जब अपना भरोसा टूटेगा तभी ना, अपना अपने भरोसे भी कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरे को दोष ठोकते जा रहे, ये और खराब। भगवान हम तो देख तू तो नालायक है ही है तो दूसरे को क्यों दोष देता, उस भी जरा कम खराब। ये भी नहीं मानने के तैयार है कि मैं ही दोषी हूं, पुनर्पण में मानने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार ये सब कदर्थ भाव जो अनर्थ है, जो आसक्ति है, इस प्रकार की उसको अगर छोड़ दें, भगवान की शरण का ग्रहण कर ले, तो पूरे संसार भव संसार से सबसे बड़े मगरमाल से आकर के दो दो पैर को क्यों ना पकड़े, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उठ जाए भगवान आकर को उठा दे क्या कर ले। लेकिन इस प्रकार का शरण भाव होना चाहिए, इस प्रकार समर्पण हो जाए तो हाथी का मुंह से इस श्लोक निकला, श्रुति निकला, तो हम लोग मुंह से क्यों नहीं निकले। जब तक स्थिति आ जाए तब तक होगा। तो स्थिति करने के लिए दाई कौन है, हम ही पकड़े हुए हैं, हम ही छोड़ेंगे, हम दूसरे को दोष नहीं देना। जैसे कहते ना कि बंदर सुराई जाता ना, सुराई तो मटका होता है, उसका मुंह छोटा होता है, उसका अंदर चना रखा हुआ था, बंदर ने देखा, बोला वाह काम बन गया मेरा, इधर उधर देखे छीप करके अंदर हाथ घुसाया, घुसाकर पूरे मुट्ठी भर चना लाया, छलांग से तला जाना चाहता, हाथ निकल नहीं रहा। अरे क्या हो रहा भाई, निकल नहीं रहा। फंस गया, खूब चिल्लाया, पहले तो अकेला खाना चाहता भाग गया, किसी को बताना नहीं चाहता, अब तो जो परेशानी में पड़ गया तो पूरा हल्ला गुल्ला किया, सारे बंदर आ गए उनके हेल्प करने के लिए, सारे आके इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठ गए कि हाउ कैन इट पॉसिबल, हाथ गया अंदर बाहर क्यों नहीं आता, अब किसी को समझ में नहीं आता। हम सभी ऐसे विशेषण करते हैं, कैसे हम दुखी क्यों होते हैं, मेरा धन है, मान है, कोटी है, गाड़ी है, कार है, फिर भी दुख, फिर भी परेशानी क्यों। अरे परेशानी है दूसरा, ये किया इसी वजह से, क्या इसी वजह से नहीं, तू ही पकड़ा छोड़ दो, आसान से निकल आएगा, ये किसी का ध्यान में नहीं। पूरे रिसर्च कमिटी सारे पेश कर दिया था कागजात, उसी को नहीं लिखा कि हम ही पकड़ गए ना, पूरे रिसर्च में भरा था 2000 कारण दूसरे का, ये था इसी की वजह से, इसी वजह से केवल स्व कारण मैं पकड़ा हूं, सोचो अब क्या करें। आप वो कितने भी कर ले, कुछ भी कर ले, मटका कुछ काम किया, MRI किया, सब कुछ किए, तब नहीं पता चलता हमारे का, ये तो अब ये कोई बता देते मुट्ठी छोड़, हम क्यों छोड़ दो, मेरा है, मैंने बड़ा मुश्किल से जाकर लिया, छोड़ दो जाएगा नहीं भाई, अब छोड़ दो तो आ जाए जब मटका हाथ निकाल दो, पूरे मटका भी तोड़ दो, सारे चना खा जाओ, नहीं स्वार्थ है ना, मैं किसी को और नहीं दूंगा, मैं ले लूंगा, ये भावना भक्तों का, ये भावना होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीरी पराई जानू रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, आप लोग जानते बोलिए। उसके बाद पर दुखे उपकार करे मने अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनको कहा जाता है भगवान के हैं, जिनका जीवन, जिनका सब कुछ, शरीर धन मन काय मन वाक्य परोपकार के लिए किए हैं, और पर दुख के उनको उपकार करते हैं, कभी मन में ये एक सेकंड के नहीं लाते मैंने किया, कोई अभिमान नहीं है, मैंने अभिमान ना आने रे, अब दूसरे को हेल्प करके बोल दिया कि मैंने क्या, मेरा नाम नहीं लगाया। एक बार एक इसे कहते हैं, मैं सुना हूं किसी से तो बोले कि उन्होंने आए थे प्रसाद हल में बैठे, बोले गर्मी लग रहा है, क्या करे पंखा नहीं है, तो बोले हम देते हैं। चार पंखा स्पंसर किए उन्होंने, चार पंखा स्पंसर किए, पंखा फिट हो गया, बड़े अच्छा हवा चलने लगा। तो 15-20 दिन के बाद वो आए थे, आके बैठे, उनको माला बैठा करके, डोनर है पंखा, उन्होंने माला दे करके उनको बैठाए, प्रसाद खा रहे। प्रसाद खाते समय वो उनका शपथ नहीं आए थे, प्रसाद खा रहे है, ऊपर पड़ा नजर पंखा चल रहा था, गुस्से में अंदर अंदर खा नहीं रहे, सब बोल रहे पूरी सब्जी गरम गरम दिए, हवा छोड़ के खा नहीं रहे, ये गरगर हो रहे थे, कौन है, उनको बोला, उनको बोला भाई प्रसाद दिए, बंद करो उसको, हाँ प्रसाद किसको बंद करो, पंखा बंद करो, क्यों पंखा बंद करो ना, कच्चो में चार तीन है ना पंखा, इसमें मेरा नाम एड्रेस दिखा है तो चलता, कोई दिखता नहीं उसको, क्या मतलब है दिया अपने, वो पंखा चला रखे मुझे भी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता, ऐसा करें पंखा इसलिए दिया बता। पंखा बंद कर दो, गर्मी के कारण तो पंखा दिया ही, पंखा चलेगा तो इसे हर ब्लेड में अपना नाम एड्रेस लिखा रखा सब, और नहीं पड़ा, इसलिए उसको बंद करो। इस प्रकार के डिमांड हम लोग का इतने अपमान, तो कैसे भगवान प्रणाम कर पाएंगे। अदोषदर्शी निरभिमान तभी भगवान प्रणाम कर सकते हैं, और हाथी ने प्रणाम कर रहा है, ये स्थिति आ चुका है उसका। अगर हम लोग ये संसार सागर से इस प्रकार ग्रहग्रस्त हैं, उसी को एक बार समझ लें, ये दुख समझ करके ऐसे स्थिति में आकर प्रार्थना करें, निरभिमान निर्दोष पर दुख दुष्दृष्टि को ना करके प्रणाम करें, प्रार्थना करें, तब जाकर काम बने, नहीं तो सना अपने मुठ्ठी में पकड़ कर कितने हाथ पर पीटे, कितने चिल्लाए रोए, कुछ नहीं बने वाला है ना। हरे कृष्ण। यस
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। मेरा एक प्रश्न यह है कि हम कोई भी प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, जय जब देव की गर्भवती थी और देवी देवता के उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे, या इंद्र या ब्रह्मा जी और भी गजेंद्र की प्रार्थनाएं चल रही है, तो हर कोई भगवान का क्या संबंध है प्रकृति के तीन गुणों से, इस भौतिक जगत से, तो इसके बारे में हमेशा कहीं ना कुछ श्लोक होते हैं इसके बारे में।
ये तो बात है ना, आप कोई बीमारी है उसको क्या बोलेंगे, ये डॉक्टर पास में गया था, ये बीमारी क्या लक्षण, ऐसे ठीक कर, यही बता ना, हम जानते हैं बीमार है, जिसको मिलता हूं कुछ ना कुछ बताता है, तो इसलिए जितने स्तुति करने वाले सब बोलेंगे यही दुनिया के कष्ट है, इससे निकलने के लिए ही, पहले तो कष्ट तो बताएंगे ना दुनिया के, त्रिगुणात्म की छड़ जगत को पहले बताएंगे, इस दुख बताए फिर बताएंगे, है ना, यही तो बोलने का सिस्टम है, कुछ है प्रकृति के नहीं बनकर किसे बोलेंगे किसे, यही तो दुख के कारण, कारण बता करके तो फिर कार्य होता ना, कार्य कारण बनो।
बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसको विस्तार में समझाया। जो हमारी दोष दृष्टि देखने की आदत है, इसको व्यवहारिक रूप से कैसे छुटकारा पाया जाए,
कोई प्रयास तो कीजिए,
क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, हमें डे टू डे
प्रयास करना चाहिए कि मुझे उसका दोष, दोस्त जब कोई कारण आता है, हमेशा स्वाभाविक रूप से धड़ाक से मन उठ जाते दूसरे के दोस्त, इसमें धड़ाक से कानों में थप्पड़ मार, बदमाश ऐसे टोको, जब जब भी दूसरे का, हम तो हर सेकंड में दूसरे के दोस्त देखते हैं, तो हर सेकंड में टोको आपने को, और ये एक तो ये प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस है, जिन्होंने दूसरे का दोष देखना छोड़ चुके हैं, ऐसे महापुरुष के अंडर रहो, उससे थापड़ खाओ, स्वयं प्रयास करो, तब जाकर होने का आशा है ना। हाँ जी,
मैं थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग चाह रहा था कि मायावाद में जैसे ये बताते हैं कि भगवान के भगवान पे ध्यान रखो भगवान बन जाए, जैसे इसे भगवान पे ध्यान लगाए और भगवान बन जाए,
हाँ
जैसे टोपा जी बताते हैं मायावाद में भी इसे सिद्धांत आता है मायावाद।
मायावाद लोग तो पहले तो माया समझते भगवान को, भगवान प्रकट कैसे होंगे, माया प्रकट होगा, भगवान के रूप को मानते हैं क्या, तो फिर प्रकट क्या, शून्य शून्य तो पहले से ही प्रकट क्या है ना नहीं चीरे तो पहले से ही कोई तो निर्गुण निराकार मानते हो, किसको क्या चाहेंगे, किसको प्रकट कराएंगे। अरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समेत।